गली की हल्की रोशनी अब पूरी तरह अंधेरे में बदल चुकी थी। श्यामली ने एक बार पीछे मुड़कर मनोज को देखा और फिर बिना कुछ कहे सुधीर का हाथ थामकर आगे बढ़ गई। सुधीर उसके बिल्कुल पास पास चल रहा था, जैसे एक पल के लिए भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। कभी वो उसके दुपट्टे को छू लेता, कभी उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता और बीच बीच में इधर उधर देखकर घबरा भी जाता। वो आएगा, वो धीमे से बुदबुदाया। कौन? श्यामली ने चलते चलते पूछा। वो ही, उसने सिर झुकाकर कहा। काले कपड़े वाला। श्यामली का दिल फिर से धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना, उसकी आवाज में भरोसा था। और शायद यही वजह थी कि सुधीर थोड़ा शांत हो गया। कुछ ही मिनटों बाद दोनों घर के दरवाजे पर खड़े थे। श्यामली ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर छोटा सा लेकिन सजा हुआ घर, जहां रोज की तरह जिंदगी चल रही थी। रसोई से बर्तन की आवाज आ रही थी। कोने में चारों बहन भाई कुछ पढ़ रहा था और आरती मोबाइल में कुछ देख रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी नजर एक साथ उधर उठी और अगले ही पल सबके चेहरे बदल गए। ये आरती सबसे पहले खड़ी हुई। उसकी नजर सीधे सुधीर पर गई, जो अब भी श्यामली का हाथ पकड़े खड़ा था। श्यामली, ये क्या है? वेद भी उठकर पास आ गया। सावित्री भी रसोई से बाहर आई, हाथ में आटा लगा हुआ था। उन्होंने जैसे ही ये दृश्य देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया। श्यामली, उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ये क्या है? लेकिन श्यामली कुछ बोल पाती उससे पहले सुधीर अचानक मुस्कुराया। ये मेरा घर है, उसने मासूमियत से पूछा। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोस्त, उसने फिर श्यामली की तरफ देखा, ये सब क्या है? आरती को अब गुस्सा आने लगा था। वो सीधे आगे बढ़ी और श्यामली का हाथ छुड़ाने की कोशिश की। श्यामली, पहले इसका हाथ छोड़ो। लेकिन सुधीर ने झटके से उसका हाथ और कस लिया। नहीं, उसने तेज आवाज में कहा, ये मेरी दोस्त है। आरती चौंक गई। अरे छोड़ो, उसने थोड़ा जोर लगाया, लेकिन सुधीर अब जिद पर आ गया था। तुम मत पकड़ो इसे, उसने आरती की तरफ गुस्से से देखा। तुम गंदी हो। क्या? आरती का पारा चढ़ गया। श्यामली, इस पागल को क्यों उठा लाई हो तुम? मौसी जी, श्यामली ने उसे शांत करने की कोशिश की। रुको, मैं समझाती हूँ। लेकिन सुधीर ने अचानक पास रखा एक छोटा कुशन उठाया और आरती की तरफ फेंक दिया। दूर हटो, वो चिल्लाया, ये मेरी दोस्त है। घर में एकदम अफरा तफरी मच गई। वेद पीछे हट गया। श्यामली, ये तो सच में पागल लग रहा है। चुप, श्यामली ने उसे डांटा, लेकिन उसकी खुद की हालत भी संभली हुई नहीं थी। आरती अब गुस्से में थी। श्यामली, इसे अभी के अभी बाहर निकालो, ये घर है, कोई पागल खाना नहीं। तभी सुधीर ने पास रखा एक छोटा प्लास्टिक का डिब्बा उठाया और जमीन पर पटक दिया। मैं नहीं जाऊंगा, उसने चिल्लाकर कहा। उसकी आंखें अब लाल हो गई थीं और सांसें तेज। ये मेरा घर है, और ये, उसने फिर श्यामली का हाथ पकड़ा, मेरी दोस्त है। सावित्री अब तक सब देख रही थीं। उन्होंने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए। उनका चेहरा सख्त था और आवाज और भी सख्त। श्यामली, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। ये क्या है? उन्होंने सीधे पूछा। क्या चल रहा है? उनकी नजरें सुधीर पर टिकी थीं। और ये तेरे साथ ऐसे? उनके शब्दों में शक साफ था। इस लफंगा को क्यों उठा लाई है? ये सुनते ही श्यामली का दिल जैसे चुप गया। माँ, उसने धीमे से कहा, ऐसा मत बोलिए। तो क्या बोलूं? सावित्री ने तुरंत जवाब दिया। घर की हालत पहले ही ठीक नहीं है और तू ऐसे आदमी को लेकर आ गई। उनकी आवाज अब ऊंची हो गई थी। आरती भी बोल पड़ी, दीदी सही कह रही है। श्यामली, तुम्हें समझ भी है क्या कर रही हो? वेद ने भी धीरे से कहा। बेटा श्यामली, डर लग रहा है इससे। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुधीर अब भी श्यामली के पीछे खड़ा था, लेकिन अब वो थोड़ा शांत हो गया था, जैसे उसे समझ आ गया हो कि सब उसके खिलाफ हैं। वो धीरे से बोला, ये सब मुझे पसंद नहीं है। श्यामली ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से अपना हाथ सुधीर से छुड़ाया और उसे पास की कुर्सी पर बैठाया। आप बैठिए, उसने बहुत नरमी से कहा। और फिर वो अपने परिवार की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज में मजबूती। आपको तो पता है ये सुधीर जी हैं, उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, हमारे मकान मालिक के छोटे भाई। सावित्री, आरती और वेद तीनों चुप होकर सुनने लगे। आज सुबह श्यामली ने पूरी घटना बतानी शुरू की, एक एक बात, ट्रक का एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, दिमाग पर चोट और फिर उसका ये बदल जाना। कमरे में धीरे धीरे खामोशी गहरी होती गई। आरती का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, वेद की आंखों में डर की जगह अब हैरानी आ गई और सावित्री वो बस चुपचाप सुनती रही। और श्यामली ने आखिर में कहा, मनोज जी ने कहा थोड़ी देर के लिए इन्हें यहाँ रख लूं, वो लेने आ जाएंगे। उसकी आवाज अब धीमी हो गई थी क्योंकि ये मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। कमरे में फिर कुछ सेकंड की चुप्पी। सावित्री ने धीरे से सुधीर की तरफ देखा जो अब कुर्सी पर बैठा अपने हाथों से खेल रहा था, जैसे उसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और श्यामली की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा कम और चिंता ज्यादा थी, लेकिन माहौल अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। घर के अंदर एक अनजान तूफान आ चुका था और अब कोई नहीं जानता था कि ये आगे क्या मोड़ लेगा। श्यामली ने एक गहरी सांस ली। घर का माहौल अभी भी भारी था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो कमरे के अंदर गई, पीछे से कदमों की हल्की सी आहट आई। उसने मुड़कर देखा, सुधीर। वो धीरे धीरे उसके पीछे पीछे आ रहा था, आंखों में वही मासूमियत और जैसे डर कि वो कहीं उसे छोड़ ना दे। रुको, श्यामली ने हल्के लेकिन सख्त स्वर में कहा। सुधीर वहीं रुक गया, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसी पर टिकी थी। तुम यहीं रुको, श्यामली ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, मैं बस कपड़े बदल कर आती हूँ। सुधीर ने सिर हल्का सा तिरछा किया, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो। जल्दी आओगी ना, उसने बच्चे जैसी आवाज में पूछा। श्यामली कुछ पल उसे देखती रही, फिर हल्का सा सिर हिलाया, हाँ जल्दी आऊंगी। सुधीर धीरे से दीवार के पास खड़ा हो गया, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे से हट नहीं रही थी। श्यामली अंदर चली गई और दरवाजा आधा बंद कर दिया। बाहर सुधीर वहीं खड़ा रहा, चुपचाप इंतजार करता हुआ।